सब ते लालच का मत खोटा, हाथ पसारे आंधर जाता पानी परे न भाई, बिन मांगे मांगे ते मग मी चुभली, अस जीने कौन बढ़ाई। मंगता बन के जीने की अपेक्षा मर जाना अच्छा है, क्योंकि मांगे ते जगनाक सिकोड़े गोविंद भला न माने, अन मांगे राम गले लगावे बिरला जन कोई जाने। अन मांगे राम गले लगावे बिरला जन कोई जाने, कोई एक जानता है। इसलिए मांगना छोड़ दो, अच्छा होगा कि भगवान से भी मांगना छोड़ दो। संसार तो संसार की बात तो दूसरी है, सबसे उत्तम होगा भगवान से भी मांगना छोड़ दो। निष्काम भाव से भगवान को भजो, सबसे अच्छी बात। मांगे ते जगनाक शिकोड़े गोविंद भला न माने, अन मांगे राम गले लगावे विरला जन कोई जाने। यह मैं कहा जे हरि रंग राते संसारी को नाहीं। मलुकदासी करें, यह मैं कहा जे हरि रंग राते संसारी को नाहीं, संसारी तो लालच बांधा देश देशांतर जाए। इसलिए जो मांगे सो कछु न पावे, अन मांगे हरि देता। जो मांगे सो कछु न पावे, अन मांगे हरि देता। कह मलूक निष्काम भजेंगे तिन आपुन कर लेता। जो निष्काम भाव से भजन करते हैं उनको अपना कर लेते हैं। माया कब तक नहीं छोड़ती है? जब लग जीव का लोभ न छूटे तब लग तजे न माया, जब लग जीव का लोभ न छूटे तब लग तजे न माया, घर घर द्वार फिरे माया के पूरा गुरु नहीं पाया, सब ते लालच का मत खोटा। बहुत खोटा मत है, इस खोटे कर्म को छोड़ दो, मांगना छोड़ दो, निष्काम हो जाओ। जो प्रारब्ध में है वो मिलेगा बिना मांगे भी, और जो नहीं है वो मांगने से भी नहीं मिलेगा। तो मांग करके चित्त को मलिन क्यों करते हो? चित्त के मलिन करना छोड़ दो। श्री ध्रुव जी महाराज को भगवान ने दिया, इसलिए देना भगवान को आता है और किसी को देना नहीं आता। ध्रुव जी अपने राज्य में आए हैं, उनको राजा बना दिया गया है। ध्रुव जी अति प्रसन्न भए हैं, उत्तानपाद ने संन्यास ले लिया है। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष का राज्य किया है, और अंत में 36,000 वर्ष का राज्य करने के बाद ध्रुव जी इनके भाई शिकार में मारे गए हैं, यक्षों से युद्ध किया है, मनु जी के कहने से युद्ध करना आपने बंद किया है। कथानक भाग को आप सब जानते ही हैं। अंत में आपको वैराग्य हुआ और सब कुछ त्याग करके गंगा के तट पर आ गए। ये यही क्षेत्र है ध्रुव जी की अंतिम तपस्थली का। जीवन की पहली तपस्थली तो है ब्रज, और अंतिम तपस्थली है ये ऋषिकेश। गंगा जी के तट पर बैठ करके ध्रुव जी भजन करने लग गए। गंगा जी की ध्वनि से ध्रुव जी को भजन में विक्षेप हुआ, ध्रुव जी जाने लग गए। गंगा जी प्रकट हो गई, भक्तराज आप आए हो बड़ी खुशी है, आप जा रहे हो बहुत दुख हो रहा है, आप कहां जा रहे हो? बालापन से हरि भजे जग से रहे उदास, तीर्थ आशा करते हैं कब आवे हरिदास। हम तो प्रतीक्षा में थे, अब आप आए और जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? ध्रुव जी बोले माताजी आपसे दूर नहीं, जहां आपकी धारा का शब्द नहीं होगा वहां बैठकर भजन करूंगा। बोले आप मेरे तट को छोड़कर न जाएं, यहां मेरी धारा में शब्द नहीं होगा। आज भी गंगा उधर जो क्षेत्र है गंगा निःशब्द है। ये गीता भवन एक नंबर का जो उधर का जो क्षेत्र है स्वर्गाश्रम का, ये क्षेत्र में आज भी गंगा जी शब्द ही नहीं, शब्द नहीं है गंगा जी में, गंगा जी की धारा में शब्द बंद हो गया। ये ध्रुव जी की तपस्थली है, जहां हम लोग बैठे हैं ध्रुव जी की तपस्थली है। अद्भुत ध्रुव जी को प्रेम प्रकट हो गया। इत्थम हरो भगवत प्रवहन नजस्र मानंद वाष्प कलया मुहुर हृदयमान विक्लिद्यमान हृदय पुलकाचितांगो नात्मानमस्मरद सा विति मुक्त लिंग। ऐसा अविरल प्रेम प्रवाह ध्रुव जी को प्राप्त हो गया। कहते आप निरंतर रोमांचित बने रहते, गदगद बने रहते, कि न आत्मानम स्मरत, अपने आप को भी भूल गए। इति मुक्त लिंगा, यही जीवन मुक्ति है। दो जीवन मुक्ति है, एक ज्ञानी की जीवन मुक्ति और एक प्रेमी की जीवन मुक्ति। ज्ञानी की जीवन मुक्ति में भले ही अभेद से मुक्ति स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर भी भेद है। ध्यान दें, क्या भेद है? भेद ये है कि वो व्यवहार और परमार्थ दो मानते हैं। शरीर का सारा व्यवहार उनका चलता है, लोक का व्यवहार भी चलता है। और जब उनसे पूछो तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि भाई ये तो व्यवहार है, परमार्थ इससे भिन्न है, परमार्थ में वस्तुता में कुछ करता नहीं हूं, ये बात कहेंगे। लेकिन प्रेमी का प्रेम इतनी उच्च कोटि की स्थिति में पहुंच जाता है कि व्यवहार और परमार्थ दो नहीं रह जाते, केवल एक प्रेम रह जाता है। इसलिए प्रेमी की जीवन मुक्ति ज्यादा ऊंची है। ज्ञानी को ज्ञान तो रहता, मैं कहां पैदा हुआ, मैं निरुपाधिक आत्मा हूं, ये समझने के बाद भी इतना बोध रहता मैं किस जाति का हूं, कहां पैदा हुआ हूं, क्या कर रहा हूं, इस व्यवहार का ज्ञान उसे होता है। लेकिन प्रेमी प्रेम में डूब करके अपने शरीर अवस्था जाति सबको भूल जाता है। ये प्रेमी की जीवन मुक्ति है और ये वस्तुतः ज्ञानी की जीवन मुक्ति से भी ऊंची है। भले ही किसी को ये बात अच्छी न लग रही हो, लेकिन हमारी समझ में तो ठाकुर जी की कृपा से यही आती। ध्रुव जी को ऐसी मुक्ति प्राप्त हुई। जब यह भाव प्राप्त हो जाएगा तो शरीर रहते हुए मुक्ति हो जाएगी, जीवन मुक्ति हो जाएगी। जीवन मुक्ति हो गई, साक्षात विमान यहीं उतर आया। इसी ऋषिकेश के स्थल पर विमान उतर आया और जैसे ही विमान उतरा है, ध्रुव जी ने विमान को नमस्कार किया है, पार्षदों को नमस्कार किया है, गंगा में गोता लगाया है, गंगा जी ने भी विदाई दी है ध्रुव जी को। यहाँ के ऋषि मुनि महात्माओं के चरणों में ध्रुव जी ने प्रणाम किया है। महात्मा भी रोने लग गए, ध्रुव जी आप आए थे तो सत्संग का बड़ा सुख था, अब आप जा रहे हो हमें बड़ी पीड़ा हो रही है। ध्रुव जी ने कहा हमारे मन में हर्ष और पीड़ा दोनों हो रही है। भगवान बुला रहे हैं, उनकी अंक में पहुंचेंगे, ये हर्ष है। सत्संग छूट रहा है, ये पीड़ा है। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख यहाँ सत्संग में सो वैकुंठ न होए। सत्संग का सुख ज्यादा सुख है, भारी सुख सत्संग का है। ध्रुव जी विमान में बैठना ही चाहते थे, तब तक भयंकर काल देवता आ गए। ध्रुव जी ने पूछा आपका परिचय? बोले मेरा नाम है मृत्यु, ये मृत्यु लोक है, यहां का देवता नहीं हूं, जो पैदा होता उसे मरना पड़ता, लेकिन आपकी कोटि के भक्त काल की सीमा में नहीं होते, वे काल जयी होते हैं। मैं आपके ऊपर अपना प्रभाव जमाने नहीं आया, मैं इसलिए आया हूं कि आप मेरे ऊपर कृपा करें। ये विमान दिव्य है, ये तो धरती छुएगा नहीं, आपको विमान में बैठना है तो मैं विमान के नीचे बैठ जाता हूं, आप मेरे मस्तक पर चरण रखकर विमान में बैठ जाइए, तो आप तो विमान में बैठ जाएंगे और आपकी चरण रज से मैं पवित्र हो जाऊंगा। ध्रुव जी ने इसकी इच्छा को स्वीकार किया। मृत्योः मूर्ध्नि पदं दत्त्वा आरुरुहात् भूतं ग्रहम्, काल के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी विमान में विराजमान हो गए। है आज तक कोई इतिहास, कोई योगी जति तपी ज्ञानी ध्यानी काल के सिर पर पैर रखकर गया हो भगवत धाम? कोई इतिहास नहीं। ये भक्ति की विशेषता, भागवत धर्म की विशेषता, काल के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी भगवत धाम। और भी भक्त गए कलयुग में, षटकोप जी भगवत धाम, सशरीर भगवत धाम गए हैं, और तुकाराम जी सशरीर भगवत धाम गए, कबीर जी सशरीर भगवत धाम गए हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जी सशरीर जगन्नाथ जी में प्रविष्ट हो गए, मीराबाई सशरीर रणछोड़ राय जी में प्रविष्ट हो गई हैं, और वृंदावन में हरिवंश जी सशरीर कुंज में लीन हो गए हैं। ऐसे तमाम भक्त हुए जो शरीर के साथ अंतर्धान हो गए। भगवान की भक्ति की ऐसी महिमा है कि पांच भौतिक जड़ शरीर भी चिन्मय हो जाता भजन से। ध्रुव जी इसके प्रमाण है, ध्रुव जी भगवत धाम गए हैं। भगवान के भक्तों के अधीन काल होता है, वे काल के अधीन नहीं होते। एक संत रहते थे ब्रज में, सच्ची घटना, ग्वारियों के साथ वो सख्य रस के उपासक थे, तो भिक्षा मांग के लाते, मधुकरी मांग के, और ग्वारिया लाते, गैया चराने आते, वो बैठ करके उन ग्वारियों के संग ही छाका रोकते थे। और ग्वारियों को भी उनसे बड़ा प्रेम था। एक दिन ग्वारियों ने कहा, बाबा छाक नहीं आरोगोगे? बोले, आज तो भैया आज तो हम शरीर छोड़ने वाले हैं, तुम लोग जल्दी खाए पी लो, आज हम नहीं खाएंगे। खा पी लिए और बाबा जी चद्दर ओढ़ के लेट गए। लेट गए तो उन लोगों ने देखा कि लेट गए कहीं सही तो नहीं मर गए, देखा तो महात्मा पधार गए। तो उन ग्वारियों ने उनका अर्थी सजाई और अर्थी लेके चले, एक गांव से लेके चले, ये ऊंचे गांव के पास की घटना है। गांव से लेके चले तो एक मैया की बेटी की विदा हो रही थी, वो रो रही थी। उसने कहा, ये किसका शरीर जा रहा? बोले, वो बाबा है उनका शरीर जा रहा है। तो वो ब्रजवासन रोते रोते बोली, करे बाबा तो आज ही मरवे को मिलो, कल मर जाता तो तेरी अंतिम यात्रा तो देख लेती, आज ही हमारी बेटी विदा है रही है, आज ही तो मरवे को मिलो। ऐसे कह के बोली, भैया ने एक बाबा के दर्शन तो कराए दे। तो उन लोगों ने अर्थी को रख दिया। बड़ी श्रद्धा होती है ब्रजवासियों में संतों के प्रति। तो वो बुढ़िया ने, मैया ने दर्शन किया बाबा के और फिर हाथ जोड़ के बोली, बाबा तू कल मर जाता तो अच्छो हो, तो आज ही क्यों मरे हो, हमारी तो बेटी की विदा है रही है, तू मर गए हो। इतना सुनते ही वो बाबा जी उठ के बैठ गए और बोले, मैया जब तेरी ऐसी इच्छा है तो कोई बात नहीं, मैं कल मर जाऊंगा। अब वो जो ग्वारिया थे वो घबरा गए कि बाबा को क्या हो गया। और वो टिकटी जो थी ना, जिस पर उनको लेके आए थे, उसी को घसीट के कुटिया के बाहर डाल दिया। कुटिया का द्वार बंद करके भीतर भजन में बैठ गए। दूसरे दिन ठीक उसी समय फिर शरीर पूरा कर दिया। ये घटना ब्रज में घट चुकी है। इसका तात्पर्य क्या है? बोले, हम लोग मृत्यु के अधीन हैं और भगवान के प्राण प्यारे भक्त मृत्यु उनके अधीन है, वे जब चाहें तब शरीर छोड़े। श्री वृंदावन बिहारी लाल। ध्रुव जी के मन में भाव आ रहा था, मेरी माताजी कहाँ होंगी? भगवान के पार्षदों ने कहा, तुम जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माता पीछे नहीं रह सकती, देखो आगे आगे चल रही है। और एक विलक्षण लीला घटी, प्रचेताओं की यज्ञशाला के ऊपर आपका विमान गया। उसी यज्ञशाला में नारद जी बैठे थे। अब नारद जी जब बैठे थे तो नारद जी गुरु जी हैं ध्रुव जी के। ध्रुव जी ने प्रणाम किया। अब तो नारद जी आनंद में भर गए, वीणा बजा करके नारद जी ने ध्रुव जी का चरित्र गाया। नारद उवाच, सुखदेव जी कहते, आतोद्य वितुदय श्लोकान, वीणा को सामान्य ढंग से नहीं बजाया, आतोद्य आसमंता तोद्य, तुद व्यथने धातु से तोद्य बना। इसका तात्पर्य है, वीणा बजाने वाले लोग जानते हैं, एक तो सामान्य सरगम निकालते हैं और एक उसमें मीड़ लेकर के निकाला जाता है, और मीड़ ही मुख्य होती है। मीड़ जोड़ झाला ये सब उनकी पद्धतियां हैं। तो वीणा बजाने में मीड़ ही मुख्य होती है, क्योंकि मंद्र सप्तक के जो स्वर हैं वो भी मीड़ से निकलते हैं, और तार सप्तक के स्वर भी मीड़ से ही निकलते हैं, और मध्य सप्तक में भी जो रंग आता है वो मीड़ से ही आता है। लहर जो आती है, जो माधुर्य आता है, वो उसके मीड से आती है। तो पूरी कलाकारी दिखा दी नारद जी ने ध्रुव जी का चरित्र गाने में। आतोद्य बड़ी गंभीर मीड लेकर के, आलाप लेकर के आपने ध्रुव जी का चरित्र गाया। क्या गाया? नूनम सुनीते पति देवताया, कपह प्रभावस्य सुतस्य ताम गतिम, दृष्ट्वाभ्युपायानपि वेदवादिनो नैवाधिगन्तुम् प्रभवन्ति किं नृपा। जो गति आज ध्रुव जी को प्राप्त हुई है, वह गति बड़े बड़े वेदवादी ऋषियों को भी दुर्लभ है। फिर बेचारे राजाओं को तो यह गति प्राप्त हो ही कैसे सकती है? हम तो ध्रुव जी को धन्यवाद नहीं, ध्रुव जी की माता को धन्यवाद देते हैं, जिसने ध्रुव जैसा पुत्र उत्पन्न किया। आज तो पहले तो संस्कारी बालक उत्पन्न होते ही नहीं, और पता नहीं कोई संस्कारी बालक आ जाए तो आज इतना भारी पाप हो रहा है गर्भ हत्या वाला, कि पता नहीं किस पवित्र आत्मा को हम उस बध कर रहे हैं। ये बहुत भारी पाप है। माताएं इस पाप का प्रतिरोध करें तो संभव है। पुरुषों की बुद्धि में तो सुधार होगा नहीं, क्योंकि जो ज्यादा चतुर चालाक बनते हैं। भावना प्रधान, दया प्रधान माताएं हैं। माताएं दृढ़ निश्चय कर लें तो भ्रूण हत्या जैसा भयंकर पाप से बचा जा सकता है। ये भारी पाप है। कौन ऐसा शिष्य है जो गुरु की कीर्ति का वर्णन न करे, लेकिन उस शिष्य की शिष्यता धन्य है जिसकी कीर्ति का गायन करते करते गुरुदेव गदगद हो जाएं। आज ध्रुव जी के चरित्र का गायन करते करते नारद जी गदगद हो गए। बोलो ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव जी के चरित्र का जो श्रवण है, भगवत धाम की प्राप्ति होती है, दिव्य प्रेम की प्राप्ति होती है।